الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة میں ہم 103 آیت تک پڑھ لیا تھا ہم نے بات پیچھے جو چل رہی تھی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کے بجائے کہ یہود آپ کی باتوں کو مانتے آپ کے اتارے ہوئے کلام کا غور و خوض کر کے جائزہ لیتے حق بات کو تسلیم کرتے اس کے بجائے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کی نیچا دکھانے کی جھوٹا نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوششیں کیں اسی ضمن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا کرنے کی بھی کوشش کی یہ میں نے بتا دیا تھا عرض کیا تھا اپنی رائے کے قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو صرف شعبدہ بازی کا نام ہے جو کچھ کلمات پڑھ کر کچھ معاملات کیے جاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن کے تمام مقامات کا جائزہ لے کر یہی بات سامنے آتی ہے کہ شعبدہ دکھانا ایک اور چیز ہے وہ دکھا لیتے ہیں اس کی میں نے دلیل یہ دی تھی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا جب معجزہ دیکھا اور اپنا جادو کا موازنہ کیا تو انہوں نے یہ بات حیرت انگیز حد تک جا کر تسلیم کی کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا سانپ بنا تھا وہ جادو نہیں ہو سکتا جس سے ان کے عمل کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ رسیاں لگ رہا تھا کہ سانپ ہیں لیکن حضرت موسیٰ کا عصا واقعی سانپ بن گیا تھا تو یہ فرق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تو ان کا شعبدہ تو صرف یہ تھا کہ رسیاں دکھائی دیں گی وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسیاں جو ہیں وہ باقی ساری چیزیں نگل جائیں تو حضرت موسیٰ کا عصا نہ صرف سانپ دکھائی دے رہا تھا بلکہ انہوں نے جو رسیاں پھینکی ہوئی تھیں وہ ساری کھا گیا یہ عمل جو ہے یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ حقیقت میں سانپ نہ بن گیا ہو تو سانپ کا حقیقت میں بن جانا اور معجزے اور جادو میں صرف آنکھوں کو دھوکہ دے دینا کہ یہ سانپ لگے ان دونوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جادو جو ہے فرعون کے زمانے کے بہترین جادوگر جو اس نے پوری دنیا سے اکٹھے کیے تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جب جادو وغیرہ بہت طاقتور چیزیں سمجھی جاتی تھیں اس زمانے کے طاقتور ترین جادوگروں کا کارنامہ کیا تھا کہ بس وہ رسیاں دکھتی تھیں دکھائی دیتی تھی کہ وہ سانپ بن گئی ہیں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں تھی تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی البتہ جادوگر جو ہیں وہ اپنی باتوں سے آپ کا ذہن خراب کر سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو باتوں کا اثر ہے نہ کہ جادو کا اس کے بعد ہاروت و ماروت کا ذکر بھی ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جادو سکھایا تھا نہیں وہ ایک الگ علم تھا اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بہرحال ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے سیکھا انہوں نے اس کو بھی جادو کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی البتہ وہ علم ایک ایسا علم تھا کہ جس میں جو چیز بھی سکھائی جا رہی تھی وہ جادو نہیں تھا وہ شعبدہ نہیں تھا وہ کچھ اور چیز تھی تو اس سارے واقعے کے بعد ایک اور میں نے بات عرض کی تھی جو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اجنبی ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ہے کہ وما ہم بزار رین بہی من احد الا باذن اللہ کہ جادو جو بھی وہ کر رہے تھے اور ہاروت و ماروت کا جو علم وہ سکھا رہے تھے اس کے ذریعے سے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے سے کہ اللہ کا اذن ہو اللہ کی اجازت ہو اللہ کا حکم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کی اپنے اندر یا ہاروت و ماروت کے اپنے علم کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں رکھی ہوئی تھی کہ جیسے پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے یا دوا کھانے سے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے ایسی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہے آپ بڑے اطمینان سے جتنے چاہیں آپ پر جادو ہو جائیں اس کے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ کچھ پریشان ہو کر بیمار ہو جائیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اسی کی روشنی میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا وہ بس دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں انتظار ہی کرتے رہ گئے آگے اس ساری گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولو انہم آمنوا, اگر یہ یہود بجائے یہ حرکتیں کرنے کے, جادو کرنے کے, ٹونے کرنے کے, ہاروت و ماروت سے جو علم چلا رہا تھا ان کے خیال میں اس کو استعمال کرنے سے, ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں ثواب ہوتا, اور اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ دنیا کی ساری کامیابیوں سے بڑھ کر ہے. کاش یہ باتوں کو سمجھتے. دو باتیں بہت اہم ہیں یہاں پر کی گئی ہیں, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حدود کی پاسداری کرنا, خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے حدود کی پاسداری اختیار کرنا. اس کے کئی پہلو دو تین دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے, ہدی للمتقین میں بھی آیا تھا, تو میں نے وہاں کچھ اور پہلو بیان کیے تھے. اس موقع پر جو پہلو ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے, کوئی جادو ٹونے کرتے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے, اگر اللہ کا ڈر رکھتے, حق کے آگے جھک جاتے, سچائیوں کو مانتے تو یہ تقویٰ تھا. تو اس ایسا کرتے نہ کہ حدود سے تجاوز کرتے. تو جو عمل اوپر ہوا ہے اس کا الٹ ہے یہاں پر تقویٰ. اوپر جو جادو ٹونے اور اس طرح کے راستے اختیار کیے گئے ہیں تو اس کو اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ اگر کسی کو کامیاب ہوتا دیکھیں تو بجائے اس کے کہ جادو ٹونے سے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں, تقوی سے کام لیں, اس کی حقیقتوں کو تسلیم کریں, اپنی بھی ترقی کا پورا سامان کریں, اپنے لیے دوڑ لگائیں. وہ جو کامیابیاں اس کو ملنی ہیں سو ملنی ہیں, وہ آپ کے جادو ٹونے سے رک نہیں جائیں گی, آپ کے حسد کرنے سے رک نہیں جائیں گی. تو حسد کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے دوسروں پر پھر اس طرح کے ٹونے کر رہے ہوتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی تو جن کی ہو گئی ان کی بھی برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہونی نہیں, تو کیوں اپنی عاقبت خراب کرنی ہے. تو تقوی کا کام یہ ہے کہ جو حقیقت اللہ نے پیدا کر دی ہے, اس کو کامیابی دے دی ہے, اس کو اولاد دے دی ہے, اس کو علم دے دیا ہے, اس کو کوئی کامیابی دے دی ہے, اس کو کوئی ناموری دے دی ہے, تو بس اس کو قبول کریں, برداشت کریں اور اپنے لیے بھی جدوجہد کا راستہ اختیار کریں. جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. جس میدان میں آپ کامیاب ہیں ضروری نہیں میں اسی میدان کا آدمی ہوں, میدان دوسرے ہو سکتے. میرے خیال میں ہر آدمی اپنے میدان کے لیے بہترین فٹ پیدا کیا گیا ہے, ہر آدمی اپنے میدان کے لیے فٹ پیدا کیا گیا ہے, لیکن ہم میدان غلط چن لیتے ہیں. کبھی ماں باپ کے کہنے پر, کبھی ایسے ہی کسی کی بات میں آنے پر, کبھی کسی کو کامیاب دیکھا کہ اچھا اتنا شاندار آدمی میں بھی یہی بنتا ہوں, حالانکہ آدمی کا میدان وہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ساری مسائی ہیں پھر آپ کی خراب ہو جاتی ہیں. تو میدان اگر آپ نے چننا ہے تو وہ بھی تقوی کے ساتھ چننا چاہیے کہ حدود کی پاسداری کرتے ہوئے جو میری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق میں اپنا میدان چنوں. تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے, حق کو تسلیم کر لیتے, حسد کی بجائے, لڑنے کی بجائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی نعوذ باللہ کوششوں کی بجائے تقوی سے کام لیتے, حقائق کو مان لیتے, سچائیوں کو تسلیم کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ثابت ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لیتے, تو اللہ کے ہاں اجر پاتے. اور اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ ان دنیا کی کامیابیوں سے کہیں بڑھ کر ہے. انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچا دکھانے پر مجھے تسلی ہوگی, میرا رانجا راضی ہوگا یا دل ٹھنڈا ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. جبکہ بعض اوقات شکست تسلیم کر لینے میں بڑی کامیابی ہوتی ہے, غلطی کا اعتراف کر لینے میں بڑی کامیابی موجود ہوتی ہے. کیونکہ اب جب آپ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, شکست تسلیم کرتے ہیں, تو اگلی فتوحات کے راستے کھلتے ہیں, اگلی کامیابیوں کے راستے کھلتے ہیں. اور اگر آپ غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اسی پر قائم رہتے ہیں. ہماری امت کی اس وقت 300 سال سے ناکامی کی وجہ یہ ایک ہے کہ ہم بہترین امت ہیں اور بس باقی لوگ سازشیں کرتے ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یعنی کوئی مذہبی لیڈر, کوئی سیاسی لیڈر اٹھا کر دیکھ لیں, فلاں کی سازش, امریکہ کی سازش, روس کی سازش, چائنا کی سازش, اور اندر اپنی سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں, مذہبی جماعتوں کو, وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا, انہوں نے مجھے یہ کر دیا, میں کامیاب ہو رہا تھا, وہ جل گئے, جلنے کے بعد یہ ہو گیا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے, صرف ایک ہی قصور ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا. تو یہ اگر ہم اپنے اندر چیز پیدا کر لیں کہ جو حق ہے اس کو تسلیم کر لیں, اور میری جو نقص ہے وہ بھی حق ہے, میں نے غلطی کی تھی وہ حق ہے, سچائی ہے کہ میں نے غلطی کی تھی, اس کو تسلیم کریں, تو تقوی یہ ہے. कि दूसरे की खूबी को, सच्चाई को, हक बात को, दीन को जो सच्चा है उसको कबूल कर लें और अपनी गलती को तस्लीम कर लें। तो अगर ये अपने हसद के ऊपर ध्यान देते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते। अगले हसरत का जुमला फरमाया कि लव कानु यालमून, काश ये बात को समझते कि अल्लाह के यहाँ जो अजर मिलने वाला है वो इससे बेहतर। दुनिया की कोई कामयाबी भी दायमी नहीं है और कोई नाकामी भी दायमी नहीं है। ये इस दुनिया में दुखों को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक तरीका अदियाने इब्राहिमी बताते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लतें हैं तीनों, उसमें ये बात है कि दुनिया आर्जी है और हमने आखरत में दायमी ज़िंदगी हासिल होनी है। एक तरीका सूफियों ने बताया है, उसके सबसे बड़े नुमाइंदे गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि बस लेट इट गो, इस चीज़ को जाने दो, जो होना था सो हो गया, परेशान क्यों होते हो। तो वो भी एक तरीका है, उससे जो आपको सुकून मिलता है उसकी वजह से एक और तरह की दुनिया सामने आती है। लेकिन इंसान इस चीज़ को कर नहीं सकता, वो किसी ना किसी रिवॉर्ड की या दूसरों को जो जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया उसको सजा देना चाहता है, वो किसी चीज़ को जाने नहीं दे सकता। तो जो खुदा का दीन है उसमें इसलिए बताया गया है कि सारे जुल्म जो तुम्हारे साथ हो रहे हैं और सारी नाकामियाँ जो तुम्हारी खूबियों के बावजूद हो रही हैं, उसका आखरत में तुम्हें पूरी दादरसी की जाएगी, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी, बल्कि तुम निहाल कर दिए जाओगे, यानी पूरी तरह से खुश कर दिए जाओगे। कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई रंजिश बाकी नहीं रहेगी, कोई रंज बाकी नहीं रहेगा, कोई पछतावा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ये होगा कहाँ पे? यहाँ नहीं होना है, ये उधार है अल्लाह ताला की तरफ से, ये आखरत में होना है। यहाँ हमने क्या करना है? हमने यहाँ तकवे की दौड़ लगानी है, ना कि दुनिया की कामयाबियों की। वो ज़रूर करें, कमाएं खाएं, उसको इस्लाम रोकता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ तकवे की एक दौड़ है जो हमने लगानी है। तो अगर कोई आदमी दुनिया में कामयाब हो गया है तो वो आर्जी कामयाबी है, और जो आखरत में कामयाब हो गया वो दायमी कामयाबी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये जो यहूद थे, ये सिर्फ ये नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कर रहे थे, पीछे भी गुजर चुका है और आगे भी, कि आपकी मजारस में आकर भी आपके साथ तोहीन आमेज़ मामलात करने की कोशिश करते थे। कुरान मजीद ने यह बताया है कि ये लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर मानी तब्दील कर देते थे। हमारे यहाँ भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मुनाज़रों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप मजाक पैदा करना है तब, आपने मजाक उड़ाना है तब आप जुमलों को, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर बयान कर दें। तो ये क्या करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके, जैसे हमें भी बातचीत कर रहे हों तो कोई बात बात का सुनी नहीं होती तो कहते हैं ज़रा दोबारा दोहरा दीजिए, उसके लिए अरब जो थे वो रायना के लफ्ज़ बोलते थे कि हमारा ख्याल कीजिए जी, मुझे बात समझ नहीं आई, रायना हमारा ख्याल कीजिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आजकल हम एक्सक्यूज़ में ही, और जनाब बड़ी मेहरबानी होगी, गलती होगी, ज़रा मैं सुन नहीं पाया, इस तरह के जुमलों में यही बात कहते हैं। वो कहते थे रायना कि हमारी तरफ तवज्जो दीजिए। तो ये कहकर वो ज़रा लफ्ज़ को ज़रा गहरे तरीके से, जो आयन के ऊपर ज़ेर लगी हुई है उसको ये में तब्दील कर देते थे, रायना हमारा चरवाहा नौज़ बिल्ला। तो अब वो ये कहकर गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा मकाम नीचा करना चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा है कि उनको पता नहीं क्या क्या गालियाँ पड़ी लेकिन अपना काम करके चले गए, कुछ नहीं हुआ, कामयाबी से आए, कामयाबी से चले गए। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वो उन्हीं चीज़ों में पड़ जाते कि वो भी जवाब देने लग जाते तो अपना भी काम ख़राब करते और दूसरों का भी। तो इसलिए इन तरह की चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल जब आदमी घटिया जगह पर आ जाता है तो फिर इस तरह की हरकतें करता है। तो इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इस घटिया जगह पे आ गए कि ना सिर्फ ये कि जादू टूना किया, बल्कि अब मजलिसों में मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की घटिया, एक आदमी पढ़ा लिखा हो, आलम दीन हो, वो आकर इस तरह के जुमले बोले, इस तरह के आवाज़ें तब्दील करे तो वो कोई अच्छा आदमी लगेगा, ये यहाँ पर आ गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू रायना, रायना ना कहा करो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि कहा करो उन्ज़ुरना, कि हमारी तरफ तवज्जो दीजिए, वस्माऊ और तवज्जो से सुना करो, ये बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने कई पहलू इसमें समेट दिया है। मेरे ख्याल में ये या अय्युहल्लज़ीन आमनु कहकर वो लोग हैं जो ईमान के रूप में आकर मजलिसों में बैठते थे और उनको उनको मुखातब करने के लिए अहले ईमान को मुखातब कर लिया गया है कि ऐ ईमान वालों तुम ये ऐसा ना किया करो। रोकना उनको पेश नज़र है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर रहत कहते भी होंगे राय ना तो ठीक ही कहते होंगे, लेकिन अब वो एक मुनाफिक बीच में आ गया, वह मुसलमान बन के बैठा हुआ है, सवाल करेगा तो वो लफ्ज़ को तोड़ मोड़ कर बयान करेगा। तो फरमाया कि तुम तवज्जो ही से सुना करो, बजाय इसके कि ये कहने की ज़रूरत पड़े कि उनजुरना या रायना कहने की ज़रूरत पड़े, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तवज्जो से बैठा करो रसूल की मजलिस में। वो कोई लंबी लंबी तकरीरें थोड़ी करते हैं, आए सवाल किया आपने बात पूछी बस सुनो तवज्जो से, तो तवज्जो से सुना करो। अब इसमें दोनों पहलू हैं, यानी यहूद को सुनाया गया है कि जो मुनाफिक बन के आते थे कि तुम हरकतें इस तरह करते हो, अल्लाह के रसूल हैं उनकी शान के मुताबिक उनकी तवज्जो से बात सुना करो, और मुसलमानों को इसमें यह तवज्जो दिलाई कि तुम भी तवज्जो से सुना करो, ये मजलिस में जुमले ही ना बोले जाएँ तो अच्छा, गोया ये बात हो गई। वलिल काफरीन अज़ाबुन अलीम, और इन काफरों के लिए अज़ाब अलीम है। अब कोई आदमी ये कह सकता है कि रायना कहने से आदमी काफर हो जाएगा, नहीं, पीछे जो पस मंज़र में बात चल रही है वो कुफर है कि अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे हैं, ना सिर्फ इनकार कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर जादू टूने कर रहे हैं, उनको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं नौज़ बिल्ला, और साथ साथ इस तरह की हरकतें भी करते हैं, तो ये कुफर की बुनियाद पर। तो इन काफरों के लिए अज़ाब अलीम है जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये गोया सिम्टम्स थे, अंदर कुफर था, उसकी चीज़ें इस तरह से ज़ाहिर हो रही थी कि कहीं वो बदतमीज़ी की सूरत में नज़र आ रहा था, कहीं जादू टूने की सूरत में नज़र आ रहा था कुछ, तो उसको अल्लाह ताला ने हिट किया है कि इन काफरों के लिए जो ये हरकतें करते आ रहे हैं, रसूल का इनकार करना चाह रहे हैं और इनकार करने के लिए ये करना चाह। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लफ्ज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं तानन फिद दीन, दीन में तान के लिए, दीन में ऐब लगाने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसको एक आम तरीका है हमारा कि हमने अगर किसी की बात नहीं माननी, बात हमें सही लग रही है लेकिन मानना नहीं चाहते, तो हम उस शख्स को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये तो आदमी बुरा जी, देखो दाढ़ी नहीं रखी हुई, पढ़ा कहाँ जी, किस मदरसे से पढ़ा जी, कोई सनद ही नहीं इसके पास। हो सकता है बात उसकी सही हो लेकिन हम नहीं मानना चाह रहे, तो उस आदमी को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये बात तो चल नहीं सकती कि बात गलत है, वो तो बल्कि कुरान बता चुका है कि ऐसे पहचानते थे कि जैसे अपने बेटों की तरह पहचानते हैं कि सच्ची बात है। अब तरीका क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कर रहे हैं उसको कैसे साबित करें कि ये गलत है? तो फिर एक ही हदफ रह जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नौज़ बिल्ला मजाक उड़ा दिया जाए, कुछ इस तरह की हरकत कर दी जाए ताकि कुछ कुछ ना कुछ लोग तो समझेंगे ना, कुछ ना कुछ लोग तो हमारे मजाक मान ही लेंगे। ये कुछ हरकतें थी जो ये करते थे। तो तानन फिर दीन का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस तरह से साबित कर देंगे नौज़ बिल्ला, तो फिर दीन के ऊपर भी बात हो जाएगी। तो ये हमारी आम खराबी है, मंतक की जो फैलसीज बताई जाती हैं उसमें एक फैलसी ये होती है कि आप आदमी को बुरा कहना शुरू कर दें बजाय बात के ऊपर दलील देने के, कि ये तो आदमी फ्रॉडी है जी, ये तो ड्रामेबाज है जी, फलाना है फलाना है। तो ये क्या करते, ये कह नहीं सकते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शान की हस्ती है कुछ भी नहीं कह सकते थे सिवाय इसके कि कोई इस तरह का मजाक उड़ाने की कोशिश करे। तो यूँ फरमाया कि इन काफरों के लिए जो इस जुरत में चले गए हैं कि अल्लाह के रसूल का इस तरह से मजाक उड़ाएं और नबी सल्लम को गिराने के लिए उनके ऊपर जादू करें ताकि दीन का जो, अगर मिसाल के तौर पर नबी सल्लम पर जादू हो जाता, जादू की वजह से कोई परेशान दिखाई देते तो कहते लो जी ये अल्लाह के रसूल है, तो चूँकि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसलिए वो बेबस थे। अब बेबसी में वो ये हरकतें करते थे। अब इसके पीछे जो मुहर्रिक क्या है वो समझ लीजिए। मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। ये जो काफिर हैं अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, ये नहीं चाहते कि आप लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से खैर कोई नाजिल हो। असल पीछे मोहर रखिए, यानी अगर एक आदमी के ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आ रही है और एक कौम सहाबा की सूरत में आपके साथ है और उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो वो ये चाहते थे कि अहले किताब के ये किसी तरह से ये रुक जाए। उसके रुकने के लिए इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है वो आपने देख लिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला मतून कर दिया जाए या आपको जादू टूने के ज़रिए से दुनिया से ही भेज दिया जाए। ये वो इन्होंने रास्ता इख्तियार किया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहेंगे तो वही नहीं आएगी, ये सोचा उन्होंने। और अगर वो काबिल कबूल नहीं रहते कौम के यहाँ तो अच्छा इस तरह के आदमी हमारे नबी हैं तो तब भी अल्लाह ताला फैसला तब्दील कर ले शायद। तो ये उनके इनकी अगर आप मौजूदा हिस्ट्री देखें तो इन्होंने हज़रत मसीह को मसीहा को दोबारा बुलाने के लिए दज्जाल पैदा करने की कोशिश की, एक नहीं कई दफ़ा कोशिशें की, क्योंकि क्राइस्ट उस वक्त आएगा जब एंटी क्राइस्ट होगा। तो ये इनका तरीका है, अजीब व गरीब बात है कि जो अल्लाह ने इनको तौरात में तरीका बताया है कामयाबी के लिए वो इख्तियार नहीं करना, बल्कि ऐसे रास्ते इख्तियार करने हैं कि जो शैतान भी पनाह मांगे कि ये कैसे हो सकता है। और ये मैं बार बार मुझे पलट कर ये कहना पड़ता है कि ये ना सोचें कि हम ऐसे नहीं हैं। हमने पिछले 150 साल में जो उम्मत इस्लामिया की तरक्की के लिए रास्ते इख्तियार किए हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। आप उठाकर देखें कि कुरान मजीद ने जो तरीका बताया हुआ है वो इख्तियार ही नहीं किया, अपने तरीके बनाए, अपने ही कोई सोचें सोची हैं। जो अल्लाह ने तरीका बताया उसको एक चीज़ भी इख्तियार नहीं की कि एक चीज़ भी उसमें से इख्तियार कर लें, कोई नहीं। बस एक लंबी दास्तान है कि मैं बेहतरीन आदमी हूँ, मैंने एक तंजीम बना ली है, आप बेहतरीन आदमी हैं, आपने एक तंजीम बना ली है, और बस उसका कोई पता नहीं कहाँ से उसका असूल लिए हैं, क्या किया है, ना उसमें समाज का मुताला, ना इंसानी जहन का मुताला, ना उसमें कुरान का मुताला, कुछ भी शामिल नहीं। बस मुझे एक ख्याल आया तो मैंने एक तंजीम बना ली, आपको ख्याल आया तो आपने बना ली। नतीजा क्या निकला कि सारे के सारे इस इतनी लंबी लंबी यानी ऐसी जद्दोजहदें भी हैं कि आदमी देखकर रश करता है कि क्या बात है, हासिल क्या है, सवाए इफ्तराक के और कुछ हासिल नहीं, कुछ भी हासिल, क्योंकि उस लाइन पर चले ही नहीं जिस लाइन पर चलकर कामयाबियां मिलती हैं। तो ये इनके यहाँ भी ऐसा ही था कि अब अल्लाह की मदद लेनी है तो क्या तरीका, अब अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ होकर के अल्लाह की मदद आ जाएगी, कितनी अजीब बात है। ये उन्होंने सोच लिया, पता नहीं कैसे सोच लेता आदमी कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह से मदद लेने के लिए अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर दो, ये मुमकिन कैसे। तो ये इन्होंने रास्ता इख्तियार किया, पता नहीं किसने इल्हाम किया कैसे हुआ। तो चाहते क्या थे कि अल्लाह की वही बंद हो जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा पर, उसके लिए रास्ता क्या इख्तियार कर रहे थे वो ही आपको बता दिया 2-3 आयतों में अल्लाह ताला ने, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा, फरमाया कि इनके ऐसा वैसा करने से कुछ नहीं होगा, ना मुशरकीन के साजिशों से ना अहले किताब की साजिशों से ये काम रुकने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है अपनी रहमत को ख़ास कर देता है। जिसके लिए चाहता है इसका मतलब यह है कि कोई ज़ाब्ता असूल है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ने बताया नहीं कि मैं जब किसी रसूल को चुनता हूँ तो क्या असूल होता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं एक यहाँ पर ये बात जो अभी सामने आई हमारे कि बस अल्लाह ताला ख़ास कर लेते हैं। दूसरा ये बता दिया कि अल्लाह यालम हैसु जल रसालत, अल्लाह को मालूम है कि उसने अपनी रसालत किसको देनी है, ऐसा नहीं है कि वो बेख्याली में दे देते हैं या बस कोई असूल कायदा नहीं है, अल्लाह को पता है। लेकिन यहूद ये ख्याल कर रहे हैं, मुशरकीन ये ख्याल कर रहे हैं कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह से गलती हो गई, वो कहते थे कि कोई मक्का के किसी बड़े आदमी पर आता, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी आदमी पर आता, तो ये अल्लाह का फ़ैसला। तो फरमाया कि अल्लाह ताला का फ़ैसला ख़ुद उसकी अपनी मशीयत के मुताबिक है, वो जिसके लिए चाहता है अपनी रहमत को ख़ास कर देता है, वो तुम्हारी तमन्नाओं पर रसालत नहीं देता या तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक रसालत नहीं देगा, वो अपनी मशीयत के मुताबिक देता है जो उसने चाहा उसके मुताबिक। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये बड़ा दिलचस्प वत्फ है कि सुना उनको रहे थे कि भई तुम ये कोशिशें कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर वही नाजिल ना हो, लेकिन साथ ये फरमा दिया कि अल्लाह बड़े ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम वाला है, इसलिए जिसको चाहता है अपनी नबूवत के लिए ख़ास कर लेता। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल अज़ीम के मुस्तहिक, उनको अल्लाह ने चुन लिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शख्सी खूबियों की वजह से और सहाबा को उनकी शख्सी खूबियों की वजह से उनका साथी मान लिया है। और यहाँ ये अजीब व गरीब बात है कि जमा कसी का बोला गया है, युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर, तुम्हारे ऊपर खैर नाजिल करने से। तो अब यहूद ने जो साजिशें की कि किसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ये वही रुक जाए, उसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल रद्द कर दिया। यहाँ कुछ लोगों ने यह ख्याल किया है कि ये हसद की वजह से ऐसा करते, हसद बिलाशुबा मौजूद है लेकिन मुशरकीन का हसद नहीं है। मुशरकीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के अंदर से थे, तो अगर उनमें एक आदमी आ गया है जिनको अल्लाह ने, तो उनके लिए फ़ख्र की बात थी, वो अपने बुतों की वजह से नहीं कर रहे थे। और यहूद अपने दीन के जो तसव्वुरात थे वो आगे वाजे हो जाएगा कि वो उनके ख्याल में कुरान मजीद भी अगर नाजिल हो रहा था तो उसमें वही शरीयत नाजिल होनी चाहिए थी जो तौरात और इंजील में नाजिल हुई थी, मुख्तलिफ़ नहीं होनी चाहिए थी। और उनका ख्याल था कि जो हमारी गलतियाँ उसको मान लिया जाए, हम भी ठीक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ठीक हैं, तो इस तरह से वो समझ रहे थे। आगे अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी दिया तो फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत अजीम फ़जल वाला है, यानी उसने नबूवत के लिए चुन लिया है तो अपना फ़जल मुकम्मल करके रहेगा। ऐसा नहीं कि इनकी साजिशों की वजह से या इनके जादू टूने की वजह से मैं अपना फ़जल अजीम रोक दूंगा। फिर फरमाया कि मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाति बखैर मिनहा व मिस्लिहा, कि हम को अगर कोई आयत मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर लेकर आते हैं या उस जैसी लेकर आते हैं। अब ये पूरी बात का जवाब दे दिया है कि यहूदियों का ये ख्याल कि उनके ऊपर जो शरीयत उतरी थी कुरान उससे मुख्तलिफ बातें कर रहा है, उसका जवाब दे दिया। मुसलमानों पर बता दिया कि ये फ़जल रुकेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हो सकता है कोई आयत हम जो नाजिल कर चुके हैं उसको मनसूख कर दें, तो कोई बात नहीं, या उस जैसी ले आएंगे या उससे बेहतर ले आएंगे, तो ये फ़जल रुक नहीं सकता, ये जो चाहे कर लें। यहूद को जवाब दे दिया। ये आजकल के मुल्हदीन का भी एक एतराज़ है कि अगर मज़हबी किताबें खुदा की तरफ से आई हैं तो सब के अंदर एक जैसी बातें क्यों नहीं है, तो रात कुछ कह रही है, इंजील कुछ कह रही है, कुरान कुछ कह रहा है, और कन्फ्यूशस की किताबें कुछ कह रही हैं और ताओमत की किताबें कुछ कह रही हैं, जैन मत की कुछ कह रही हैं, तो एक जैसी बातें क्यों नहीं हैं। तो ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर देखने का एक नतीजा है, शरीयत के कुछ अहकाम हैं जो मुख्तलिफ हुए हैं, बाकी दीन वही है। यानी अगर आप दीन इब्राहिमी की तीनों शाखों में देखें, वो अल्लाह को मान रहे हैं, तौहीद के कायल हैं, आखरत को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, बुनियादी दीन तो वही है। अब शरीयत किसी मौके पर हम रोज़ाना बदलते हैं, पाकिस्तान का कानून देखिए कितनी दफ़ा बदल जाता है, नए मसाइल पैदा हो गए, हदूद आर्डिनेंस को देख लीजिए उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती रहती हैं, क्योंकि हालात बदल जाते हैं, कुछ ना कुछ तब्दील करना पड़ता है। तो शरीयत के दो हिस्से हैं, एक दायमी दीन से मुतल्लिक है, वो कभी तब्दील नहीं होती, नमाज़ें पहले ही पढ़ी जाती थी, रोज़े रखे जाते थे, उसमें कभी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तब्दीली की ज़रूरत होती है ग़ुलामी का क्या करना है, तलाक का क्या करना है, वो कौम के हालात के अतबार से, सूरत हाल के अतबार से कवानीन बदलते रहते हैं, उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि अल्लाह ताला के इल्म नाकिस या अल्लाह ताला के यहाँ कोई मसला हो गया है। और यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात का भी जवाब दिया है कि ये कोई अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ नहीं है कि कोई आयत मनसूख करके नई आयत ले आए, उसका आगे जवाब मज़ीद देंगे अल्लाह ताला, ये कोई नक्स की बात नहीं है। हमारे यहाँ फ़लसफ़े ने, इल्म कलाम ने ये तसव्वुर पैदा किया कि जब राय तब्दील होती है तो इसका मतलब है कि पहली राय गलत थी या सोचने वाले के अंदर ऐप था कि कल सोचा था आज तब्दील करना पड़ गया, कल जो सोचा था आज उसे तब्दील करना पड़ गया, इसका मतलब है कि बात गलत थी, ज़ात सोचने वाले के अंदर नक्स था, ये लाजम नहीं आता। उस वक्त भी सही सोचा गया था, आज भी सही सोचा गया, लेकिन जिस चीज़ के बारे में सोचा गया था वो तब्दील हो गई, तो सोचने वाले का नक्स हुआ या चीज़ में तब्दीली की वजह से सोचने वाले की अच्छाई हुई, ये ऐब होता है कि मैं कहूँ जी नहीं नहीं मैंने जो पहले दिन बात कही थी वही करूँगा, अब जो भी हालात हो गए, सैलाब आ गया तब भी नमाज़ पढ़नी है मस्जिद में जाकर, ये खराबी होगी। आम हालात में तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, लेकिन सैलाब आ गए अब भी मस्जिद जाके खोलेंगे, अजान देंगे, नमाज पढ़ेंगे, डूबते हैं डूब जाएं, गर्क होते हैं तो गर्क हो जाएं, नमाज वैसे ही पढ़नी है। ये ऐब होगा। ये ऐब तो नहीं है कि सैलाब आएगा तो नरमी कर दी जाए कानून में, सैलाब ना आया हो तो सख्ती रखी जाए कानून में। तो ऐब तो यह है कि किसी गलत जगह पर डट जाए आदमी, ये ऐब नहीं है कि हालात के मुताबिक अपना हुक्म तब्दील कर दे। ये तो नहायत हिकमत की, नहायत अदल की, नहायत शफकत की बात है कि अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला हालात के मुताबिक मामलात में सख्ती नरमी करते रहते हैं। इसको अल्लाह ताला ने बयान भी किया था कि मैं वज़ू का जब हुक्म आया था कि मैं कोई ऐसा नहीं करता कि तुम्हारे ऊपर सख्ती करूँ, मैं बस तुम्हें पाक करना चाहता हूँ, पाक करने के लिए तयम्मुम का असूल दे दिया। अब तयम्मुम में कुछ भी नहीं करते हम, कोई बड़ा अमल नहीं करते, बस मिट्टी पे हाथ फेरे और चेहरे पे फेर लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो अल्लाह ताला की ये नरमी है कि वो किन हालात में क्या हुक्म देते हैं। उसको बयान किया कि मैं जब कोई आयत मनसूख करता हूँ या उसको भुला देता हूँ तुम लोगों को, तो या वैसी ही लेकर आता हूँ या उससे बेहतर लेकर आता हूँ। तो इसमें क्या खराबी है? अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की ये ताकत छीन लें कि अल्लाह ताला अपना हुक्म बदल नहीं सकते? भाई अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो अपना हुक्म उठाने का, भुला देने का भी कुदरत रखता है, उसमें क्या मसला है? वो चाहे तो सारा कुरान मजीद यहाँ से उठाए, किताबों में के अंदर से भी, जहनों के अंदर से भी, और नया कुरान मजीद नाजिल कर दे, किताबों में छपा हुआ ऐसे ही नज़र आए और हमें कभी लगे ही ना कि कुरान तब्दील हो गया, उसकी क्या कुदरत में कमी है? सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए अगर कुरान के नज़ूल के ज़माने में अगर एक आयत आगे पीछे कर देते हैं अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला का इख्तियार, चाहे तो सारा ही कुरान उठा लेते, चाहे तो जितना नाजिल किया था सारे महफूज कर देते हैं, जिस तरह नाजिल किया था उस तरह महफूज कर देते हैं, खुदा का फैसला, कोई इसमें मसले नहीं है। आगे फरमाया कि अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज, क्या तुम नहीं जानते कि ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह ताला की? तो बादशाह को इख्तियार होता है कि नहीं? जो चाहे हुक्म दे, जैसा चाहे हुक्म दे, जब चाहे हुक्म वापस ले ले, जब चाहे नया हुक्म दे दे, तो बादशाह कायनात। एक पहलू से कुदरत को बयान कर दिया कि मेरी कुदरत है, जब चाहें जो चाहूँ कर दूँ। दूसरे पहलू से बयान कर दिया अपना इख्तियार कि मैं बादशाह कायनात हूँ, ज़मीन व आसमान की बादशाहत मेरे हाथ में है, मैं हुक्म देने वाला हूँ। तुम्हें तो मैंने इख्तियार दिए हैं दुनिया में, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हुक्म तब्दील नहीं कर सकता। तो मेरी बादशाहत है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ हुक्म दे सकता हूँ, जिसको चाहूँ दे सकता, जिससे चाहे वापस ले सकता हूँ, बादशाह। तो ये खुदा की हाकमियत दूसरी दलील दी इस बात की कि मैं आयात में से जिसको चाहूँ ले लूँ, जिसको चाहूँ कायम रखूँ, जिसको चाहूँ बुला दूँ, जिसको चाहूँ उसकी जगह नई आयत दे दूँ, उस जैसी दे दूँ या उससे बेहतर दे दूँ, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं। मैं खालिक कायनात हूँ, हर तरह की कुदरत रखता हूँ, और दूसरा ये कि मुझे ही बादशाहत का हक हासिल है। कानून देने का हक अगर किसी को है तो वो मैं हूँ, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो इसलिए मैं जब चाहूँ कोई हुक्म मनसूख कर सकता हूँ, जब चाहूँ कोई हुक्म दे सकता हूँ। अब आगे फरमाया कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीम वला नसीर, तुम्हें अपना सोचना चाहिए कि जब मैं आयतें नाजिल कर दूँ, नया हुक्म दे दूँ, नई नबूवत पैदा कर दूँ, तो अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, उसको देखो। बजाय इसके कि ये नक्श निकालो कि अल्लाह ताला ने क्यों तब्दील कर दिया जी, ये कहने की जरूरत करने के बजाय कि अल्लाह को क्या हक पहुंचता जी, तो रात के खिलाफ कुरान में नाजिल हो जाए, ये सोचो कि अल्लाह ने नाजिल कर दिया है तो तुम्हारा क्या बनेगा इनकार करने के बाद। याद रखो कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली और कोई मददगार नहीं है, उसने जब पकड़ लिया तो मारे जाओगे। तो ये पूरी बात जवाब दे दी इस बात की कि ये जो मीन मेख निकालने की कोशिश करते हैं और ये एतराज़ कर रहे हैं कि कुरान मजीद में तौरात से मुख्तलिफ अहकाम आ गए हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये नबूवत झूठी है या नबी अकीम सल्लम पर कुरान नाजिल नहीं हो रहा है, उसकी वजह तुम्हारे अंदर का खन्नास है। क्योंकि अल्लाह ताला को पूरा इख्तियार हासिल है, पूरी कुदरत हासिल है, जब चाहें कानून तब्दील कर दें, जब चाहें नया हुक्म दे दें। तुम्हें सोचना है कि तुम खुदा की मखलूक हो, खुदा के आगे जवाब दे हो, तो अगर इनकार कर दोगे, ये बात वाजह रहनी चाहिए कि इनके ऊपर पीछे अल्लाह ताला खुल के बात कर चुके हैं कि ये हक को जानते हैं, पूरी तरह से बात को समझ गए हुए हैं, इनको मालूम हो गया हुआ है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। अब देखिए ये 15-16 साल हो चुके हैं जब ये सूरह उतरी है, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 15-16 साल हो चुके हैं, उसमें आकर ये बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले दिन कह दिया गया कि ये तुम इनकार कर रहे हो, नहीं, पूरी तरह बात वाजे थी। तो अब यहाँ पर ये हमें भी अपना जायज़ा लेना चाहिए कि बाज़ुकात हमें हक बात नज़र आ रही होती है, लेकिन हम सिर्फ मीन में हक निकालने के लिए, बात को टालने के लिए, बात से बचने के लिए, गुरेज़ करने के लिए कोई बहाने से बना रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इनके सारे बहाने जो शरीफ मुसलमानों को भी भटका सकते थे, मासूम लोगों को, उनके लिए अल्लाह ताला बात वाजे करते हैं, वरना ये इस काबिल नहीं है बातें कि इनको तवज्जो भी दी जाए। लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों के बीच में बैठ के करते थे, बस सादा मुसलमान जो आम आवाम होते हैं वो बातों में भी आ जाते थे, इसलिए इनकी वजाहत करनी पड़ती और ख़ुद इनको ये बताना पड़ा कि तुम जो ईमान नहीं ला रहे तो उसके पीछे तुम्हारी क्या खराबियाँ हैं, उनको दुरुस्त करो। ऐसा ना समझो कि कोई तुम हक पर कायम हो और अब नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह बातिल बात लेकर आ रहे हैं, नहीं, वो बात सही लेकर आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर खराबियाँ। तो ये बात वाजे करने के लिए, तो पिछले से मैंने 2-3 दरस पहले अर्ज़ किया था कि इनके ऊपर बात वाजे कर दी गई थी कि तुम ये ईमान क्यों नहीं ला रहे, और इनका जो इसका कहना कि हमारे ऊपर जो नाजिल हुआ है उसको हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, ये आयत 91 में बात कही गई थी। इस बात के बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातब कर लिया था, साथ साथ उनको भी बातें करते चले जा रहे थे, लेकिन मुसलमानों को भी मुखातब कर लिया था कि तुम इनकी रिशा दवानियों में, इनकी शरारतों के असर में ना हो, इन्होंने तो ऐसे ही करते रहना है। और फिर किरदार की जो घटिया तरीन सूरत थी कि अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हुए जादू कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, रसूल मानते हुए उनको मजलिस में आकर मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी हकीकत अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी मुसलमानों, ताकि इनके ऊपर, मुसलमानों के अंदर जो कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके ऊपर बात वाजे हो कि मामला कितना संगीन है जो ये इख्तियार किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सख्त जुमला है कि मालकुम मिन दून अल्लाह मिन वलीम वला नसीर, कि अल्लाह के मुकाबले में कौन आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई भी नहीं आ सकता, तो पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। उसके बाद फरमाया कि हम तुरीदूना अन तसअलु रसूलकुम कमा सुअला मूसा मिन कबल। बहुत खूबसूरत जुमला है, मुसलमानों को मुखातब किया हुआ है। तो फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे हज़रत मूसा से सवाल किए गए थे। अब देखिए कि बात कहाँ पहुँचा दी, मुसलमानों को मुखातब करके ये सवाल, ऊपर जो था ना भाई, तौरात में बातें और हैं, कुरान में बातें और हैं, इसी तरह वो सवाल जो पीछे भी गुजरे हैं उनको, जितने भी सवाल थे उनको सामने रख कर बताया कि ये तुम क्या अपने रसूल से वैसे ही सवाल करना चाहते हो जैसे मूसा से किए गए। तो इशारा कर दिया कि तुम्हें ये सवाल कौन सिखा रहा है, यहूद सिखा रहे थे। तो मुसलमानों की सफ़ों में बैठकर जो मुनाफिकीन ये सवाल करते थे, पीछे से वो इंजेक्ट किए हुए थे यहूद के। तो फरमाया कि क्या तुम भी अपने रसूल से वही सवाल करोगे जो मूसा से पूछे गए, उन्हीं के सवाल आते हैं ना जो यहाँ सामने आ रहे हैं। अब हज़रत मूसा से सवाल आता आप पीछे पढ़ चुके हैं, सूरह अल बकरा पूरी तफसील कर रही है। वो कहते गाय ज़िबा करो, कहते कौन सी गाय, किस तरह की गाय, किस रंग की, किस साइज़ की, किस उम्र की, क्या कुछ ने पूछा, पढ़ चुके हैं हम। उन्होंने कहा कि भाई सप्त में ये करना है, उन्होंने दूसरा काम कर दिया। उन्होंने कहा कि मिसाक बांधा है तूर के नीचे, उन्होंने और ही कहानी बना डाली। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा वो है जो ऊपर रहता है आसमानों में और ज़मीन पर, और उसने सब कुछ खल किया, उन्होंने बछड़े को मबूद बना लिया। ये सारा कुछ वो करते रहे हैं, उस तरह के सवालात के बारे में कहा कि क्या तुम भी ऐसा ही करोगे। रसूलों से सवाल का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना चाहिए। रसूल से जब कोई सवाल किया जाएगा और उसका जवाब आ जाएगा तो वो दीन बन जाएगा। ये नज़ाकत ये होती है, रसूलों के ज़माने में हर पूछा गया सवाल जब उसका जवाब रसूल की तरफ से आएगा तो वो उसकी हैसियत बड़ी बुलंद होती है। वो ऐसा नहीं कि मेरे आपका सवाल जवाब है, ऐसा नहीं, वो अल्लाह के रसूल की बात है। अब वो जो दीन बन जाता है तो फिर उसमें अगर इस तरह के सवाल किए जाएं कि जी मैंने मसलन साहबा पूछते नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई ईद के दिन हम कौन सा बकरा ज़िबा करें, जो कुछ आप बता देते हैं उसकी उम्र इतनी हो, उसका वजन इतना हो, उसका रंग इतना हो, उसके पांव ऐसे हों, तो दीन बन जाना था। और उम्मत, किसी उम्मती के लिए कुर्बानी करना आसान नहीं रहना था। अगर यहूद की तरह साबा भी सवाल कर लेते तो एक तो ये पहलू था। दूसरा पहलू यह था कि रसूल को जिद करना है, बात मानी होनी नहीं है, वो कोई समझने के लिए सवाल नहीं करना, सिर्फ जिद करने के लिए, बात को टालने के लिए, इनकार करने का बहाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही सवाल जरे बहस थे कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल पूछना चाहते हो जैसे कुफर करने के लिए हज़रत मूसा से पूछे गए थे, इनकार के बहाने ढूंढने के लिए हज़रत मूसा से किए गए थे। इसलिए अगली बात ये फरमाई कि वमई यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जिसने ईमान को कुफर से तब्दील कर दिया, फक्कत जल्ला सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब कुफर, ईमान को कुफर में तब्दील करने का क्या मतलब है कि ये दिलों से जान चुके थे, इनका लाशऊर गवाही दे रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, कोई इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, लेकिन ये इनकार करने के लिए इस तरह के सवाल करते थे, इस तरह के बहाने बनाते थे। हालांकि खुद इनकी अपनी तारीख से वाजे है कि अम्बिया ने किस तरह से शरीयत तब्दील की है। किबले ही का मामला देख लें कि जब मिस्र में रहते थे, हज़रत मूसा के घरानों को किबला बनाया गया, वहाँ से निकले तो जो ताबूत सकीनत था जिसमें हज़रत मूसा की चीज़ें थी, ऐसा और इस तरह की चीज़ें, उसको किबला बना लिया गया। जब हज़रत सुलेमान ने हैकले सुलेमान ही बनाया तो उसको किबला बना लिया गया। ये जानते थे कि हमारे अंदर एक ही हुक्म किन तीन तब्दीलियों से गुजरा, उसके बावजूद ये सवाल कर सकते थे कि शरीयत कैसे बदल रही है जी कुरान मजीद में, नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इनकार का बहाना बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा कि तुम ईमान को कुफर में तब्दील कर रहे हो, तो जिसने ईमान को कुफर में तब्दील किया वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। सवाल सबील, सीधे रास्ते के दो मानी हैं। एक मानी वो है कि सीधा रास्ता, जो दीन जिसको हम कहते हैं सही हदायत, सच्ची हदायत, और दूसरा होता है कि जो मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है। वो हदायत हदायत नहीं होती जो आपको मंजिल तक ना पहुँचाए। हदायत कौन सी चीज़ होती है जो आपको मंजिल तक पहुँचा दे। तो कुरान मजीद इस मानी में हदायत है कि ये आखरत में कामयाबी तक लाजमन पहुँचाएगा। और कुरान के अलावा जितनी हदायतें हैं उनके बारे में ये कहना नामुमकिन है कि वो लाजमी सही अंजाम तक पहुँचाएगा, मंजिल तक पहुँचाएगा। तो फरमाया कि जिसने इस कुरान का इनकार कर दिया वो मंजिल वाली हदायत नहीं पाएगा, वो ऐसे रास्ते से भटक जाएगा जो मंजिल तक ले जाने वाला है। तो यहाँ पर बात को रोक लेते हैं, सवालात के लिए टाइम हो गया है। सवालात